नमस्कार।
जी
आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर बात कर रहे हैं।
जी
पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक है संजीवनी विद्या का विस्तार।
हाँ,
ये 1988 से 90 के बीच जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला आई थी, ये उसका हिस्सा है।
जी हाँ,
और पूज्य गुरुदेव ने खुद कहा था कि उनका ज्ञान शरीर इसी साहित्य में जीवित रहेगा,
बिल्कुल,
और इसे जन जन तक पहुंचाना है।
बिल्कुल। और ये बात उन्होंने वंदनीय माता जी से 1990 की वसंत पंचमी को कही भी थी।
अच्छा।
कि मेरे ज्ञान शरीर को, मतलब मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य को सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।
तो चलिए इसी ज्ञान दृष्टि को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल। और ये पुस्तक देखिए, उस समय की जो सामाजिक जरूरतें थी उनको बहुत अच्छे से संबोधित करती है। जब लग रहा था कि समाज में बदलाव जरूरी है, एक बड़ी आवश्यकता है,
हाँ,
तो ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये विद्या की बात करती है। मतलब एक गहरी समझ, जिसे मेधा भी कह सकते हैं।
अच्छा।
जो व्यक्ति और समाज दोनों के नव निर्माण के लिए उनके हिसाब से अनिवार्य थी।
हाँ, पुस्तक में शुरू में ही पूज्य गुरुदेव एक बहुत जरूरी बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो उस जमाने की स्कूली शिक्षा थी,
जी,
वो ज्यादातर नौकरी दिलाने तक ही सीमित थी।
सही बात है।
उसमें व्यक्तित्व विकास कैसे हो, चरित्र निर्माण हो, समाज को कैसे समझें, ये सब पहलू गायब थे।
हाँ, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं थी जीवन के लिए।
बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये समाज में असली बदलाव लाने के लिए काफी नहीं थी, और यहीं पर संजीवनी विद्या की जरूरत महसूस होती है।
एकदम सही कहा। और ये जो विद्या है, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान, मतलब लिटरेसी नहीं है।
अच्छा।
इसका सीधा असर अंतःकरण पर होता है, व्यक्ति की जो अंदरूनी चेतना है उस पर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जी, जैसा पुस्तक में बताया गया है, ये विवेक जगाती है, पर्सनैलिटी को निखारती है, टैलेंट को बाहर लाती है, और शालीनता, मतलब ग्रेस, उसको इतना ऊपर ले जाती है कि साधारण मनुष्य भी देवतुल्य बन सके।
देव मानव जैसा।
हाँ, देव मानव। पूज्य गुरुदेव मानते थे कि ये जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान कर सकती है।
तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि पूज्य गुरुदेव ने उस समय की शिक्षा की सीमाएं पहचानी और एक ऐसी विद्या सामने रखी जो अंदरूनी बदलाव पर फोकस करे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये युग साहित्य या ये विद्या करोड़ों लोगों तक पहुंचे कैसे?
हाँ, ये चुनौती तो थी,
खासकर तब जब देश की एक बड़ी आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी और आर्थिक मुश्किलें भी थी।
निश्चित रूप से। और इसी चुनौती के समाधान के लिए पूज्य गुरुदेव ने वो युग शिल्पियों का एक बहुत ही अनूठा विचार दिया।
हाँ हाँ, युग शिल्पी।
ये वो समर्पित लोग थे जिनसे कहा गया कि आप रोज कम से कम 20 पैसे उस समय के हिसाब से
जी,
और 2 घंटे का समय दें,
बस इतना।
हाँ, और इस छोटे से अंशगान से वे ये युग साहित्य, ये पुस्तकें खरीदें, पहले खुद पढ़ें, परिवार को सुनाएं, और फिर
झोला पुस्तकालय।
बिल्कुल, झोला पुस्तकालय के जरिए अपने आसपास के लोगों को पढ़ने के लिए दें बिना किसी मूल्य के।
मतलब ज्ञान को शेयर करने का एक सतत मॉडल।
जी बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाला डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था ही।
ये सुनने में कितना सरल लगता है, रोज थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा समय।
हाँ,
लेकिन इसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है
जी,
वो कितना बड़ा हो सकता है।
जैसे अखंड ज्योति पत्रिका का उदाहरण दिया है
जी, जिसे वो अपनी संरचनात्मक संपत्ति मानते थे।
हाँ, वो भी तो उस समय सीमित साधनों से ही लाखों पाठकों तक पहुंच रही थी।
बिल्कुल, 5 लाख प्रतियों से 25 लाख पाठक, ऐसा अनुमान था।
तो उसी तरह अगर 1 लाख समर्पित युग शिल्पी हों, तो वो करोड़ों लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकते थे।
उनका सिद्धांत यही था, जले दीपक ही बुझे दीपकों को जलाएंगे।
सही बात है। और इस पूरे काम को, इस प्रक्रिया को और ऊर्जा देने के लिए, शक्ति देने के लिए शांति कुंज में फिर विशेष ट्रेनिंग सेशंस रखे गए।
अच्छा, ट्रेनिंग भी थी इसके लिए?
जी हाँ, 1990 की वसंत पंचमी से ये शुरू हुए, 5-5 दिन के सत्र होते थे ये।
5 दिन के सत्र?
हाँ, और इनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि जिसे उन्होंने कहा प्राण चेतना का प्रत्यावर्तन करना था।
प्राण चेतना का प्रत्यावर्तन, ये थोड़ा गहरा शब्द है, और आपने वाणी के स्तरों का भी जिक्र किया था।
हाँ,
इसे सरल शब्दों में कैसे समझें?
हाँ, देखिए, पुस्तक में बताते हैं कि प्रशिक्षण में सिर्फ बैकरी वाणी, यानी जो हम बोल रहे हैं शब्द,
हाँ,
सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि मध्यमा वाणी, जो हमारे विचारों के स्तर पर है।
अच्छा।
और परावाणी, जो अंतर्ज्ञान या बहुत गहरी प्रेरणा का स्तर है, उस ऊर्जा का भी संचार होता था।
मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं?
बिल्कुल नहीं। सरल भाषा में कहें तो ये सिर्फ दिमागी ज्ञान नहीं था, ये एक अनुभव था एक्सपीरियंस जो सीधे आत्मा को छूता था, व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाओं को अंदर तक प्रभावित करता था।
तो इसमें क्या क्या शामिल था?
इसमें साधना थी, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तपस्या थी, यानी अच्छे आदर्शों के लिए अनुशासन और मेहनत, और प्रायश्चित भी था, मतलब अपनी पिछली भूलों को सुधारने का विधान।
अच्छा, प्रायश्चित भी?
जी, और शांति कुंज का जो सात्विक माहौल था और ऋषि युग्म की सूक्ष्म उपस्थिति, वो इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाते थे।
और लक्ष्य क्या था इन सत्रों का?
मुख्य लक्ष्य था लोक मानस का परिष्कार, मतलब आम लोगों की सोच को बेहतर बनाना, और विशेष रूप से नारी जागरण पर बहुत जोर था।
ये महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल होने के लिए कहा था ना?
जी हाँ, बिल्कुल। सेवानिवृत्त लोग हों, गृहस्थ हों, महिलाएं हों, साधु संतों, सभी से उन्होंने आवाहन किया कि इस विद्या विस्तार में अपना योगदान दें।
और वो सबसे बड़ी बाधा किसे मानते थे? साधनों की कमी को?
नहीं, वो मानते थे कि सबसे बड़ी बाधा व्यस्तता या साधनों की कमी नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अपनी कृपणता है, मतलब संकीर्ण सोच।
अच्छा।
और स्वार्थपरता है,
मतलब समस्या बाहर नहीं अंदर है।
बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर इंसान इन मानसिक बाधाओं को पार कर ले, तो हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, पुरुष हो या नारी, कोई भी हो, वो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी भूमिका निभा सकता है।
तो अगर हम सार देखें तो संजीवनी विद्या का विस्तार सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव के समाज के नव निर्माण का एक व्यवहारिक रोडमैप है।
जी।
जो व्यक्तिगत बदलाव और समर्पण पर आधारित है, जिसे युग शिल्पी जमीन पर उतारें और पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर को फैलाएं।
निश्चित रूप से ये पुस्तक पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयास और आंतरिक शुद्धि पर बल देती है।
हाँ।
और यही एक विचार करने लायक प्रश्न उठता है। पूज्य गुरुदेव ने सामूहिक बदलाव के लिए व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे लगातार प्रयासों का रास्ता दिखाया।
जी।
तो आज के समय में हम सब अपने अपने स्तर पर, बिना किसी बड़े सिस्टम पर निर्भर हुए, विवेक और शालीनता जैसे मूल्यों को खुद में बढ़ाने के लिए और दूसरों से साझा करने के लिए कौन सा छोटा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं?
ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। और पुस्तक के प्रकाशक भी यही अनुरोध करते हैं कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए।
निश्चित तौर पर, ये एक जरूरी संदेश